सर्वांग सम शब्द तीन शब्दों से बना है, सर्व अंग सम, सर्व जमा अंग जमा सम। इसका मतलब हुआ ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हैं, सभी चीजें समान हैं। जैसे मान लीजिए हम पेड़ की पत्तियों के बारे में सोचें, सब हरी होती हैं, लेकिन हरा रंग भी अलग अलग तरह का होता है। इसलिए दो पत्तियों के बारे में कहने के लिए कि वो सर्वांगसम हैं या नहीं, सबसे पहला ध्यान तो हमारा उनके रंग पर चला जाता है। मान लीजिए रंग एक जैसा है, तो पता चला कि पत्तियों का आकार, उनकी शक्ल अलग अलग है, इसका मतलब वो सर्वांगसम नहीं है। लेकिन पता चला कि एक ही पेड़ की दो पत्तियां हैं, उनका रंग भी एक सा है, उनका आकार भी एक सा है, लेकिन एक पत्ती छोटी है और एक पत्ती बड़ी है, तब भी वे सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी। अगर सभी कुछ एक सा होता तो हम कहते इनके सभी अंग समान हैं, यानी ये सर्वांगसम हैं। अगर हम बात करें वृत्त की कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, या कुछ ऐसी वस्तुओं की जिनमें दो बराबर माप के वृत्तों का प्रयोग होता है, जैसे साइकिल के पहिए, दोनों पहिए बराबर होते हैं, किसी की पहनी हुई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ सब बराबर होती हैं, तो हम कहेंगे कि वृत्त सर्वांगसम हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं या फिर उनकी परिधि बराबर है। दो वर्ग कब बराबर होंगे? वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दो वर्ग सर्वांगसम होंगे अगर दोनों वर्गों की भुजा की माप बराबर होगी, क्योंकि कोणों के बारे में तो हमें पहले से ही पता है कि दोनों आकृतियों के प्रत्येक कोण की माप 90 अंश है। यदि एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा के बराबर हो गई, तो दोनों की, क्योंकि चारों चारों भुजाएं आपस में ही बराबर हैं, इसका मतलब एक वर्ग के सभी भाग दूसरे वर्ग के सभी भागों के बराबर हो गए, तो हम कहेंगे दो वर्ग सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजा की माप समान है। अगर कोई नेगेटिव से फोटो डेवलप की जाए, दो फोटोज, तो उनमें आने वाले चेहरा तो एक सा होगा, यानी आकार एक सा है, लेकिन संभव है एक छोटी फोटो हो और एक बड़ी, क्योंकि एनलार्जमेंट की गई थी, तब तो वो सर्वांगसम नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर उनका साइज भी एक जैसा है और चित्र तो एक सा है ही, तब हम कहेंगे कि ये दोनों फोटोज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम आकृतियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं और ऐसा आभास ही नहीं होता कि ये दो आकृतियां हैं। जैसे हम अपने हाथों को देखें, जब हम नमस्कार करते हैं दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और एक तरफ से देखने पर ऐसा पता नहीं चलता कि ये दो हाथ हैं, बल्कि एक ही हाथ लगता है, तो हमारे दोनों हाथ भी सर्वांगसम हैं। अगर हम पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली पोस्टेज स्टैम्प, डाक की स्टैम्प्स को देखें, किसी भी तरह के चित्र की, मे बी गांधी जी का चित्र है और 50 पैसे वाली स्टैम्प है, तो सभी स्टैम्प्स पर रंग भी एक सा होगा, चित्र भी एक सा होगा और माप भी एक सा होगा, तो हम कहेंगे ये सभी डाक की टिकेट्स सर्वांगसम हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम एक रुपये के सिक्के की बात करें, सिक्के अलग अलग समय पर नए नए चलाए जाते हैं, लेकिन यदि एक ही समय पर चलाए गए दो सिक्कों की बात करते हैं, तो भी वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, तब हम कहेंगे ये दो कॉइन्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम कार्बन पेपर का इस्तेमाल करें, दो कागजों के बीच में एक कार्बन पेपर रख दें और ऊपर वाले कागज पर कोई चित्र बनाएं, तो कार्बन पेपर की स्याही की वजह से नीचे वाले पेपर पर भी बिल्कुल वही चित्र बन जाता है, उसी माप का, उसी आकार का, जो ऊपर वाले पृष्ठ पर बना हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्वांग समता का क्या अर्थ है। सर्व जमा अंग जमा सम यानी आकृतियां कॉन्ग्रुएंट। अब अगर हम बात करें एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, एक तीन भुजाओं वाली बंद आकृति और एक चार भुजाओं वाली बंद आकृति, अब इस विषय में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सर्वांगसम होंगी या नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और दूसरी हमने कहा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, तो इनका आकार तो एक सा हो ही नहीं सकता। अगर हम दो रेखाओं की बात करें, दो रेखाखंडों की, तो उनका आकार एक सा है, लेकिन अगर उनकी माप भी एक सी हो तब हम कहेंगे ये दो रेखाखंड सर्वांगसम हैं। हम बात कर चुके हैं अगर दो वर्ग हैं तो उनकी भुजा की माप समान होनी चाहिए, अगर दो वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्या की माप समान होनी चाहिए, या फिर अगर हम चूड़ी की बात करते हैं तो उनकी परिधि की माप यानी सर्कमफ्रेंस बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम दो त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज के बारे में वो चिंता नहीं होती कि एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है, अब हम बात कर रहे हैं दो त्रिभुजों की, दोनों की तीन तीन भुजाएं हैं, लेकिन क्या ये गुण आते ही हम कह पाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? भाई अभी तो हमने सिर्फ इनके नाम की बात की है, त्रिभुज भी तो अलग अलग आकार के हो सकते हैं, उनकी शक्ल शेप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा वर्ग और वृत्त में नहीं होता। अगर वर्ग है तो उनका आकार एक सा होता है, अगर वृत्त है तो उनका आकार एक सा होता है, लेकिन त्रिभुजों के बारे में ऐसा कह पाना संभव नहीं है। त्रिभुज अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ त्रिभुज हो सकते हैं जिनके सभी कोणों की माप 90 अंश से कम हो, या फिर त्रिभुज में कोई कोण 90 अंश का भी हो सकता है, या कोई ऐसा भी त्रिभुज हो सकता है जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ त्रिभुजों के बारे में सिर्फ उसके नाम से कुछ कह पाना संभव नहीं है। हम सर्वांगसम शब्द के लिए कह चुके हैं सभी अंग समान, तो त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं हमें उस पर विचार करना होगा। त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में तीन भुजाओं वाली बंद आकृति में तीन भुजाएं होती हैं और तीन भुजाओं की बंद आकृति में तीन ही कोण होते हैं, इसका मतलब त्रिभुज के छह अंग हो गए, उसकी तीन भुजाएं और तीन कोण। दो आकृतियां जो आकार और माप में एक दूसरे के समान होती हैं सर्वांगसम कहलाती हैं, और उनके इस गुण को हम कहते हैं सर्वांग समता। टू फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड एग्जैक्टली द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। दो सर्वांगसम आकृतियों में जब एक आकृति दूसरी के ऊपर रखी जाती है तब वे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं, यानी आकृतियाँ वो शेप वो आकार कोइंसाइड कर जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि वो दो हैं या एक है। अब हम बात कर रहे हैं सर्वांगसमता के विस्तार में, एक आकृति के सभी भाग दूसरी आकृति के संगत भागों के बराबर। अब यहाँ संगत शब्द हमने नया लगाया जिसके बारे में हमने पहले नहीं कहा था। अब बात कर रहे हैं हम त्रिभुज की, यह आवश्यक नहीं कि त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, वो तीनों अलग अलग माप की भी हो सकती हैं, दो भुजाएं एक सी हों और तीसरी भुजा अलग माप की हो, ऐसा भी हो सकता है। जब हम दो त्रिभुजों की बात करेंगे तो एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होनी चाहिए, पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में एक भुजा के बराबर होगी, और यही बात हमारी तीसरी भुजा पर भी लागू होगी। हमने याद याद कीजिए, कहा था दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे जब उनकी लंबाई बराबर होगी, दो वर्ग सर्वांगसम होंगे जब उनकी भुजा की माप बराबर होगी, और दो वृत्त सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। लेकिन त्रिभुजों के बारे में इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती। हमने कहा त्रिभुजों के 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। When all the sides and all the angles of one triangle are equal to the corresponding sides and corresponding angles of the other, we say that the two triangles are congruent. यानी दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं तथा सभी कोण दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं और संगत कोणों के बराबर हों तो वे कहलाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। मान लीजिए त्रिभुजों का नाम है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। अगर कहा जाए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके लिए इन दोनों त्रिभुजों के नामों के बीच में एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर कहते ही पहले त्रिभुज की भुजा ए बी यानी पहला और दूसरा शीर्ष इन दोनों से मिलकर बनने वाला रेखाखंड दूसरे त्रिभुज के पहले और दूसरे शीर्ष P और Q से जो त्रिभुज की भुजा बनी PQ उसके बराबर होगी। AB भुजा बराबर दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ। इसी तरह से भुजा BC बराबर भुजा QR। और पहला और तीसरा शीर्ष लेते हैं तो भुजा AC बराबर भुजा PR। क्योंकि यहाँ पर शीर्षों में संगतता है, A का संगत शीर्ष है P, B का संगत शीर्ष है Q, C का संगत शीर्ष है R, तो भुजाओं के साथ साथ कोणों में भी शीर्षों की संगतता का प्रयोग करेंगे, तब होगा कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब हमें त्रिभुजों के कुछ भाग पता हैं और हमने कौन सा भाग किसके बराबर देख लिया तो त्रिभुजों के सर्वांगसमता बताने के लिए शीर्षों की संगतता को ध्यान में रखना जरूरी है। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर तो ये आवश्यक नहीं है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज क्यूपीआर के भी सर्वांगसम हो। त्रिभुजों में सर्वांगता समता का संबंध सदैव एक संगतता के साथ होता है और उसी के अनुरूप भागों को ध्यान में रखते हुए हमें लिखना होता है। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन टू ट्रायंगल्स इज ऑलवेज रिटन विद करस्पॉन्डिंग्स और मैचिंग पाथ्स इन प्रॉपर ऑर्डर। अब यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के तो इसका अर्थ होगा कोण A बराबर कोण P। और अगर हमने किसी त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनका क्रम पलट दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR को देखें, तब कोण A की माप कोण Q के बराबर होनी चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसका मतलब जो सर्वांगसमता दी हुई है उसमें शीर्षों का जो क्रम है उस क्रम को बनाए रखते हुए हमें उसके संगत भागों को देखना होगा। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 6 कॉम्पोनेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अगर हमें किसी दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता की बात करनी है तो क्या हमें सभी 6 संगत भागों की जांच करनी होगी कि वो समान है या नहीं? जैसे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की संगतता की घोषणा करने से पहले क्या हमें कोण ए कोण पी के बराबर है या नहीं, कोण बी और कोण क्यू बराबर है या नहीं, कोण सी और कोण आर बराबर है या नहीं, और इसी तरह से तीनों संगत भुजाओं की समानता की जांच करनी होगी, या हमें कुछ कम भागों की भी समानता जांचने के बाद ये पता चल जाता है कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, क्योंकि छः छः भाग नापना तो काफ़ी समय ले लेता है, लंबा काम है। यदि एक त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी और बी सी की माप यानी दो भुजाओं की माप और इनके बीच बने कोण बी की माप हमें पता हो और हमें कहा जाए कि त्रिभुज की रचना कीजिए, तो आप पढ़ चुके हैं कि इस तरह की रचना कैसे की जाती है। एक और त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं जिसमें भुजा पी क्यू की माप ठीक उतनी ही है जितनी भुजा ए बी की माप है और भुजा क्यू आर की माप भी हमें उतनी ही लेनी है जितनी भुजा बी सी की माप है। कोण क्यू की माप कोण बी के बराबर है, इससे भी हमने त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। यदि ट्रेसिंग पेपर की मदद लें या फिर इन दोनों में से किसी एक त्रिभुज को पेपर में से कट कर लें और एक दूसरे पर रखें, तो हम पाएंगे कि त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं। ट्रायंगल्स हैव कोइंसाइडेड, इसका मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी त्रिभुज सर्वांगसम है। हम त्रिभुजों के शेष भागों को नाप कर भी जांच सकते हैं कि संगत भाग बराबर हैं। हमने मात्र तीन तीन संगत भागों को समान लिया था और शेष तीन संगत भाग अपने आप बराबर आ जाते हैं। इसका मतलब त्रिभुजों की सर्वांगसमता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम छः के छः संगत भागों की नाप को जांचें। हमने इन त्रिभुजों को बनाते हुए भुजाओं के दो युग्म और उनके बीच के कोण का ही प्रयोग किया, यानी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। छह संगत भाग नापकर उनकी समानता नहीं जांची, तीन संगत युग्मों के बराबर होने पर भी त्रिभुज सर्वांगसम बन जाते हैं, यह हमने देखा। यदि एक त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो हमने पाया कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। इफ एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, वी सी दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, तो हम इसको एक नियम के रूप में बनाते हैं और नियम का नाम रखेंगे भुजा कोण भुजा दो भुजाएं और बीच का कोण। जब हमने कहा बीच का कोण तो लिखते समय भी हम इसको बीच में लिखेंगे भुजा कोण भुजा या फिर साइड एंगल साइड, जिसे हम छोटा करके लिखते हैं एस ए एस। ध्यान दीजिए, बीच का कोण, दो भुजाएं और मात्र एक कोण, कौन सा? बीच का। ठीक इसी तरह से अगर हमें एक त्रिभुज में दो कोण दिए हों और उनके बीच की भुजा का माप पता हो, तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं और इस तरह से केवल एक ही त्रिभुज बनता है। गिवन टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, अगर कोण बी और सी की बात करते हैं तो भुजा बी सी की बात करेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें भुजा बी सी की माप है 8 सेंटीमीटर, कोण बी 50 अंश, कोण सी 75 अंश और त्रिभुज बना त्रिभुज ए बी सी। एक और त्रिभुज बनाया, त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें कोण वाई की माप कोण बी जितनी ली, कोण जेड की माप कोण सी जितनी ली और वाई और जेड दोनों को मिलाने वाली भुजा वाई जेड की माप बी सी जितनी ली, तो हम पाएंगे कि तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग समाते हैं। अगर हम एक दूसरे पर ढकने की कोशिश करेंगे तो वो कोइंसाइड हो जाएंगे, और इस नियम को हम कहते हैं कोण भुजा कोण, त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा। और नियम लिखते हुए भी हम लिखते हैं कोण भुजा कोण, यानी दो कोणों के बीच वाली भुजा, और कहेंगे हम एंगल साइड एंगल या ए एस ए प्रमेय। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुजों में छह संगत अवयवों की समानता की जांच की कतई आवश्यकता नहीं है, या तो दो भुजाएं और बीच का कोण, या फिर दो कोण और उनके बीच की भुजा। अगर ये संगत भागों की समानता जांच ली जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अभी हमने बात की कि दो कोण और बीच की भुजा। अब प्रश्न उठता है कि यदि भुजा बीच वाली नहीं है, कोई दो कोण है और एक भुजा है और दूसरे त्रिभुज के संगत भागों के बराबर है, क्या तब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है? क्योंकि नियम तो हमारा कहता है कोण भुजा कोण, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोण कोण भुजा। सोचने की बात है कि ये नियम से तो हट गए, लेकिन क्या अभी भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? आप याद कीजिए, त्रिभुज के कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्रीज। इफ वी नो द मेजर ऑफ टू एंगल्स, वी कैन वेरी वेल वेरी इजीली फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अगर हमें दो कोण पता हैं तो तीनों कोणों के योग का जो नियम है उसका प्रयोग कर हम तीसरे कोण की माप भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमने कहा कोण कोण भुजा, क्या यहाँ हम तीसरे कोण की माप पता नहीं लगा सकते? तीनों का योग 180 अंश है तो तीसरे कोण की माप भी पता चल जाएगी, और तब जो भुजा हमने ली उसके लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं दोनों जो कोण बन रहे हैं, अगर हम उन दोनों कोणों को गौर करें तो अब आ जाएगा हमारे पास कोण भुजा कोण, क्योंकि एक त्रिभुज का तीसरा कोण भी दूसरे त्रिभुज के तीसरे संगत कोण के बराबर आ जाएगा। तब दोनों ही त्रिभुजों में इसी नियम का प्रयोग कर एंगल साइड एंगल हम कह सकते हैं कि अभी भी त्रिभुज congruent हैं। Triangles are congruent if two angles, any two angles and a side may not be an included side. If the corresponding parts are equal, even then we can conclude that triangles are congruent. अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप पता है और दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं की माप भी पता है। जैसे त्रिभुज लिया ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा हमने त्रिभुज लिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्रम पर ध्यान दीजिए, ए पहला शीर्ष है, बी दूसरा शीर्ष है, सी तीसरा शीर्ष है। इसी तरह से एक्स वाई जेड में जो हमने बोला तब भी एक्स पहला शीर्ष, y दूसरा शीर्ष और z तीसरा शीर्ष। तो शीर्षों की संगतता को ध्यान में रखते हुए हम दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के बारे में जानते हैं। भुजा AB बराबर है भुजा XY, पहला और दूसरा शीर्ष दोनों त्रिभुजों का। इसी तरह से भुजा BC बराबर भुजा YZ, ये दूसरा और तीसरा शीर्ष हुआ, और तीसरा और पहला शीर्ष जब लेते हैं भुजा AC बराबर भुजा XZ, यानी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं। क्या यहाँ हम ये निर्णय ले सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? अब शेष तीन अंग हैं इनके, तीनों कोण। अगर ये दो त्रिभुज बनाने के बाद हम इनके संगत कोणों की माप देखें तो पता चलता है कि कोण A बराबर कोण X है, कोण B बराबर कोण Y है और कोण C बराबर कोण Z है। यानी तीन भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होते ही तीनों कोण एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर आ जाते हैं। तो हम कह पाएंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज एक्स वाई जेड। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों, या हम कोणों की बात कर ही नहीं रहे हैं, मात्र तीन भुजाएं एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है। और लिखते समय हमें उनकी शीर्षों की संगतता का विशेष ध्यान रखना होगा। इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, वी कैन कंक्लूड दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इस नियम को हम लिखते हैं भुजा भुजा भुजा, या फिर साइड साइड साइड, और छोटे में लिख देते हैं एस एस एस। अभी तक हमने तीन नियम देखे सर्वांग समता के, दो भुजाएं और बीच का कोण, या दो कोण और उनके बीच की भुजा, और ये भी हमने देखा कि दो कोण और बीच की भुजा के बदले में यदि कोई दो कोण और एक भुजा हो जाए तब भी हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं थोड़ा सा सोचने के बाद कि त्रिभुज सर्वांग सम है। अब बात करते हैं हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज। हालांकि पहले के तीनों नियमों में हमने कभी भी त्रिभुज के किसी भी कोण पर कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। हम जांच कर देख सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के बराबर हो तो त्रिभुज के अन्य भाग अपने आप बराबर आ जाते हैं। यहाँ एक कोण है और दो भुजाएं हैं, जबकि हमने एक कोण और दो भुजाओं के बारे में जो पहले नियम देखा था उसमें ये बात स्पष्ट थी कि दो भुजाओं के बीच का कोण है, जबकि यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है। लेकिन यहाँ कोण पर एक शर्त है कि कोण 90 अंश का होना चाहिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के बराबर हों तो त्रिभुज अपने आप सर्वांगसम हो जाते हैं। If the hypotenuse and a side of one right angled triangle are respectively equal to the hypotenuse and a side of another right triangle, then we can see that triangles are congruent. Right angled triangle की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जब हम नियम बताएंगे तो समकोण, कर्ण और भुजा या right angle, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, और शॉर्ट में हम लिखते हैं RHS, राइट एंगल हाइट एंड साइड। मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगी कि जब हमने दो भुजाएं और एक कोण की बात की थी SAS, तो उस एंगल के माप पर कोई शर्त नहीं थी, एंगल किसी भी माप का हो सकता था। तब था दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। लेकिन जो ये नियम हमने अभी अभी चर्चा की उसमें समकोण उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई दो भुजाएं कहना गलत होगा, तो हमें ये कहना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण के बराबर होंगे, तब भी वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं समान हैं तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? जी हाँ, नियम हम सीख चुके हैं SSS। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण समान हों, क्या तब हम कभी कह पाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है? यानी एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर। ऐसी स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज छोटा और एक त्रिभुज बड़ा और उनके संगत कोण बराबर माप के, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में तीनों तीनों कोणों की माप 180 अंश है। तो इस तरह से त्रिभुजों की रचना की जा सकती है कि उनके संगत कोण समान हों लेकिन भुजाओं की माप संगत माप बराबर नहीं है, तब संभव है कि त्रिभुज सर्वांगसम न भी हों। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, तब सदैव त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और हमने नियम देखा है SAS, भुजा कोण भुजा। दो संगत कोण त्रिभुजों में और उनके बीच की भुजा बराबर है, तो नियम हम पढ़ चुके हैं ASA, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, दो कोण और बीच की भुजा। अब हमने एक स्थिति ये भी देखी थी कि कोई दो कोण थे लेकिन भुजा बीच की नहीं थी, लेकिन हमें यह भी पता है कि त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है, तब उससे हम तीसरा कोण एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज में उसके संगत कोण की माप को भी पता कर सकते हैं और वो भी दो बराबर आएंगे, क्योंकि दो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा तीसरा भी बराबर आएगा। तब ये नियम भले ही नहीं है AAS, लेकिन हम दूसरे नियम त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश का प्रयोग करके ये बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं कि समकोण त्रिभुज हैं, त्रिभुज के नाम में ही हमने कहा समकोण त्रिभुज हैं, तब उसके बाद मात्र दो भुजाओं जिनमें एक कर्ण होगा और एक भुजा होगी, केवल उनके इन्हीं दो भागों की मापों की जांच करनी होगी कि एक त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में संगत भाग बराबर हैं या नहीं। इन केस ऑफ ट्रायंगल ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दैट इज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल नियम ऐसा नहीं होता। अगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, जैसे हमने त्रिभुज के केस में कहा कि तीनों संगत भुजाएं बराबर हैं, तो निश्चित रूप से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन क्या यही बात किसी चतुर्भुज के बारे में कही जा सकती है कि एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं दूसरे चतुर्भुज की चारों संगत भुजाओं के बराबर हों? तो क्या निष्कर्ष निकल पाएगा कि चतुर्भुज सर्वांगसम है? हम बात कर रहे थे त्रिभुजों की सर्वांगसमता की, और हमने ये भी देखा था कि त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण, लेकिन हमने कुछ नियम खोज लिए कि दो त्रिभुजों को ये बताने के लिए कि वो सर्वांगसम है या नहीं, हमें सभी 6 संगत भागों की बराबर होने की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। SSS, SAS, ASA और RHS, हमें 4 नियम पता चले। अब ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या चतुर्भुज के बारे में अगर हमें पता हो कि दो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS, और उनकी सभी संगत भुजाएं बराबर हैं, तो क्या हम जैसे त्रिभुजों में SSS कहा, यहाँ SSSS कहकर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चतुर्भुज सर्वांगसम होंगे? ऐसा नहीं होता। त्रिभुज एक बहुत खास तरह की आकृति है, कि त्रिभुज में लचीलापन नहीं है, ये रिजिड शेप है। अगर हमने तीन माप दिए होने पर त्रिभुज की रचना कर ली और उन्हीं तीनों मापों से अलग अलग लोग जितने भी त्रिभुज बनाएंगे वो सभी सर्वांग समाएंगे, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। चतुर्भुज में मात्र चार अंगों की माप दी होने से सभी चतुर्भुज एक से नहीं बनते। इसका मतलब चतुर्भुज के बारे में इस तरह से कोई नियम बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं और दूसरे चतुर्भुज की चारों संगत भुजाएं बराबर हैं तो हो सकता है कि उनके कोण, संगत कोण आपस में बराबर नहीं हों। त्रिभुजों के बारे में तो मात्र तीन चीज़ें ही काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन कोई तीन चीज़ें नहीं, SSS, SAS और ASA और समकोण त्रिभुज में RHS। चलिए अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु शब्द से ही स्पष्ट है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान माप की हैं तो क्या हम उसके कोणों के बारे में कोई बात बता सकते हैं कि क्या वो बराबर होंगे, क्या वो तीनों बराबर होंगे या तीनों अलग होंगे या कुछ और? मात्र अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि उन तीनों कोणों की माप का योग हमेशा 180 अंश होता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर उन दो बराबर भुजाओं के बीच वाला जो कोण है हम उसका समद्विभाजक खींच दें, यानी उस कोण को दो बराबर भागों में बांट दें, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज दो त्रिभुजों में बट जाएगा। वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? उनकी एक एक भुजा तो साझी है दोनों त्रिभुजों में। कौन सी है? उस कोण का समद्विभाजक। और एक एक भुजा तो पहले से ही समान थी, और इन दो संगत समान भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है क्योंकि हमने समद्विभाजक खींचा है। तो यहाँ पर नियम लगता है SAS, यानी जो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के बीच वाले कोण का समद्विभाजक खींचा, तो इस तरह से जो दो त्रिभुज बने वो आपस में सर्वांगसम होंगे, यानी उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम पाएंगे कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण उन सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण हैं, इसका मतलब वो भी बराबर होंगे। तो हमें क्या नियम मिला? किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान माप के होते हैं। द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। और नियम सिर्फ ये नहीं है कि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके दो कोण बराबर हैं, तो भी हम जांच कर देख सकते हैं कि उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी समान माप की होती हैं। तो हमें नियम मिला, इफ two angles of a triangle are equal, then the sides opposite to them will also be equal. यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान माप के हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी समान माप की होंगी। जैसे अगर एक त्रिभुज है जिसके एक कोण 40 अंश है, एक कोण 100 अंश है, हम जानते हैं कि तीसरा कोण इन दोनों कोणों के जोड़ को 180 में से घटाने पर मिलेगा, तो पता चलता है कि तीसरा कोण भी 40 अंश का है। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण हैं 40 अंश, 40 अंश और 100 अंश। अब दो कोण बराबर हैं तो इन दोनों कोणों की सामने वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, या फिर sides opposite to equal angles of a triangle are always equal। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं समान हों, जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसी नियम का इस्तेमाल करके हम ये भी देख सकते हैं कि यदि सभी भुजाएं समान हैं तो सभी कोण भी समान होंगे। और सभी समान कोणों की माप कितनी होगी? तीनों का योग है 180 अंश और तीनों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप होगी 60 अंश। इसका मतलब प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होगी 60 अंश। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण बराबर होते हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण बराबर होते हैं। लेकिन अगर कोण अलग अलग माप के हैं तो क्या हम उनकी सामने वाली भुजाओं के बारे में कुछ कह सकते हैं? जैसे त्रिभुज की भुजाओं में एक भुजा बड़ी है और एक भुजा छोटी है, तो भी क्या उनके सम्मुख कोण समान हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनके सामने वाले कोण बराबर हो गए तो हमने नियम ये भी पढ़ा कि त्रिभुज में दो बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन हम ये पहले ही कह चुके हैं कि एक भुजा बड़ी है और एक छोटी है, तो इसका मतलब हो गया कि यदि त्रिभुज में दो असमान माप की भुजाएं हैं तो उनके सामने वाले कोण भी असमान माप के होंगे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेकिन कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? त्रिभुज में असमान भुजाओं के सम्मुख कोण असमान होते हैं, ये तो हमने पता लगा लिया। लेकिन हम जांच कर देख सकते हैं कि असमान भुजाओं में जो सामने वाले कोण हैं उनमें बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। यानी बड़ी भुजा के सामने वाला बड़ा कोण होगा, छोटी भुजा के सामने वाला छोटा कोण होगा। इफ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड विल बी लार्जर एंड एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड विल बी स्मॉलर। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने वाला छोटा। अब इससे उल्टा नियम देखते हैं, क्या वो भी सत्य है? यानी यदि किसी त्रिभुज के दो असमान कोण हैं, मान लीजिए एक कोण है 40 अंश का और दूसरा कोण है 70 अंश का, क्या हम इन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाओं की मापों की भी कुछ तुलना कर सकते हैं? तब हम जांच कर देख सकते हैं कि 40 अंश और 70 अंश वाले कोणों की सम्मुख भुजाओं में 70 अंश के कोण की सम्मुख भुजा बड़ी है और 40 अंश के कोण के सम्मुख भुजा छोटी है। इसका मतलब हुआ पहले वाले नियम का कन्वर्स भी ट्रू है। इफ इन अ ट्रायंगल टू एंगल्स आर अनइक्वल देन साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर एंड द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज शॉर्टर। इन अ ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड ऑपोजिट टू इट। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। अब ये नियम हम देख चुके कि त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। त्रिभुज के कोणों का आपस में एक संबंध है 180 अंश। क्या ऐसा ही कोई नियम हम त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानते हैं? त्रिभुज की भुजाओं का योग की बात करना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, त्रिभुज बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब त्रिभुज की भुजाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं, हमें यह जांचना होगा। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। कोई त्रिभुज बनाकर देखें, उसकी तीनों भुजाओं की नाप लें फुट्टे से और जांच कर देखें कि तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाओं का योग हर बार तीसरी भुजा से अधिक आता है। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए भुजाएं दी हैं और कहा जाए कि त्रिभुज की रचना कीजिए, आप रचनाएं सीख चुके हैं कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होने पर हम एक रचना कर सकते हैं। मान लीजिए भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो ये जानने के लिए कि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव भी होगा या नहीं, हम इनमें से कोई दो भुजाएं 3 जमा 4 7 जो 5 से बड़ा है, 3 जमा 5 8 ये 4 से बड़ा है, और इसी तरह से 4 जमा 5 3 से बड़ा है, यानी इस आकृति के किन्हीं दो भुजाओं का योग हर बार तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव होगा। चलिए माप लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज बनाना संभव होगा? देखिए, अगर हम 3 जमा 5 करते हैं जो 8 आता है, ये तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, तीसरी भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता। अगर माप होते 3, 5 और 9 सेंटीमीटर, उस सूरत में 3 जमा 5 8 और तीसरी भुजा 9, तब भी गलत हो जाता, क्योंकि हमने कहा कि नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ तीसरी भुजा इतनी लंबी है कि बाकी दो भुजाओं के योग से भी बड़ी है, तब भी हम कह पाएंगे कि ऐसे त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि जब 3 माप दिए हैं तो क्या हमें बारी बारी से दो दो भुजाओं के योग करके तीसरी भुजा के साथ तुलना करना ज़रूरी है, या कुछ कम काम करके भी काम चल सकता है? फिर से उदाहरण लेते हैं। माप है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए, जब भी हम दो भुजाएं इनमें से छांटेंगे जिसमें से एक भुजा 6 सेंटीमीटर है जो सबसे लंबी है, तो उसमें कुछ और जोड़ने पर वो निश्चित ही तीसरी भुजा से अधिक आ जाएगी। 6 जमा 5 निश्चित ही 4 से बड़ा होगा, क्योंकि 6 ही 4 से बड़ा है। 6 जमा 4 निश्चित ही 5 से बड़ा होगा, क्योंकि 6 अकेला ही 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई 3 माप दिए हुए हैं तो उनमें से जो 2 छोटे वाले माप हैं, मात्र उनका योग करके हम तीसरे के साथ तुलना कर लें तो ये अपने आप में काफ़ी होगा। तीनों बार जोड़े बनाकर तीसरे के साथ तुलना करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने कहा भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। जब हम 14 सेंटीमीटर भुजा वाले के साथ एक और भुजा जोड़ेंगे तो वो निश्चित ही तीसरे वाले से बड़ी आएगी। तो अब हमें ये निष्कर्ष निकालने से पहले कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, हमें केवल 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं का योग करके ही तीसरी भुजा के साथ तुलना करनी होगी। 7 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर, जिसकी माप 14 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो हमें तीनों जोड़े बनाकर तीसरी भुजा के साथ तुलना नहीं करनी पड़ेगी। 2 छोटी भुजाएं, तीनों में से 2 छोटी भुजाएं जोड़ी और तीसरे के साथ तुलना की, तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज बनाना संभव होगा या नहीं। तो आज हमने सर्वांगसमता की कुछ शर्तें देखी। SSS, SAS, ASA और RHS, और हमने त्रिभुजों के भी अपने आप में कुछ तरीके देखे कि त्रिभुज के कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। यदि त्रिभुज के 2 कोण समान हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। यदि त्रिभुज के 2 कोण असमान हैं तो निश्चित रूप से उनकी सम्मुख भुजाएं भी असमान होंगी। और हमने ये भी देखा कि त्रिभुज की बड़ी भुजा का सामने वाला कोण छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होता है। और त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं ये बताने के लिए हमें अगर 3 भुजाओं के माप पता है तो त्रिभुज बन सकता है या नहीं हम बनाए बिना भी बता सकते हैं।